पैराग्राफ चेंज। किंतु पद्मावती जो बड़े अंशों में झांसी द्वारा रची और गढ़ी गई है, जरूर स्त्री के बारे में झांसी की मनोभूमि को अधिक पारदर्शी तरीके से उद्घाटित करती है। पद्मावती या इतिहास प्रसिद्ध पद्मिनी का जो भी जीवन वृत्त हो, झांसी उससे अधिक मतलब रखते नहीं दिखाई देते। उनकी पद्मावती यानी पद्मिनी कम से कम उनके काव्य के पूर्वार्ध तक उनकी अपनी रची और गढ़ी हुई है। ब्रैकेट में विजय देव नारायण शाही जरूर जोर देकर तथ्यों के साथ कहते हैं कि पद्मावत का उत्तरार्ध भी झांसी का ही कल्पित उन्हीं का रचा गढ़ा है। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह पद्मिनी का जो वृतांत है वह पद्मावत के बारे में रचे जाने के बाद का है, अर्थात झांसी ने कथा का उत्तरार्ध इतिहास से नहीं लिया, इतिहासकारों ने उसे झांसी के पद्मावत से लिया है। बहरहाल संप्रति हम इस विवाद के विस्तार में नहीं जाएंगे। ब्रैकेट बंद। सिंघल द्वीप। राजा गर्धन्व सेन के यहाँ पुत्री का जन्म, उसका पद्मती नाम, उसका रूप, रूप की ख्याति सुनकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन का सिंघल द्वीप प्रस्थान, पद्मावती को अपने प्रेम के बल पर पाना, उसे चित्तौड़ लाना, ये सारी बातें झांसी की कल्पित कथा है। बहुत दूर तक बहुत अंशों में पद्मावत की पद्मावती झांसी की ही रचना और उन्हीं की कृति है, और कहने की जरूरत नहीं है कि पद्मावती के निर्माण में झांसी ने अपनी समूची रचनात्मक प्रतिभा को खपा दिया है। पृष्ठ संख्या 268। पद्मावत में आदि से अंत तक जो पद्मावती है वह झांसी का ही निर्माण है। झांसी ने अपना सब कुछ पद्मावती को रचने सिरजने में झोंक दिया है। प्रसिद्धि के अनुसार झांसी बेहद कुरूप थे, परंतु जायस के इस कुरूप फकीर ने पद्मावत में पद्मावती के रूप में सौंदर्य का एक मानक रचा है। ऐसे सौंदर्य का संसार में जिसका सानी और कोई न हो, सुंदरता जहाँ भी जितनी है झांसी ने खोज खोज कर सब पद्मावती में भर दी है। अनिंद्य सुंदरी, यही नहीं भारतीय धर्मशास्त्रों की विधि निषेधों की चिंता न करते हुए उन्होंने पद्मावती को वेद पुराण सब पढ़ा दिए हैं। सुंदरता और वैदुष्य में अभूतपूर्व पद्मावती झांसी का विलक्षण निर्माण है। जिस सहृदयता से झांसी ने पद्मावती को रचा है और जिस सहृदयता से उन्होंने नागमती के वियोग को चित्रित किया है, स्त्री के पति झांसी की मनोभूमि निर्मल है, सहज ही अनुमान किया जा सकता है। पद्मावती नागमती को राजपूती परंपरा के अनुसार पति के साथ चिता पर बिठाते हुए वे कितने भावुक हो उठे हैं, कितना पसीज उठे हैं, तथा अलाउद्दीन की हवस को जिस तरह उन्होंने लानत दी है, पद्मावत की सुरमी को जिस तरह अमृत बताया है, जैसे कि स्त्री संबंधी दृष्टि के निर्मल निश्चल होने का साक्ष्य है ये सारी बातें। अब हम मध्ययुग की सगुण भक्ति पर आएं और सगुण भक्ति की स्त्री संबंधी दृष्टि और दृष्टिकोण का जायजा लें। सगुण भक्ति कहते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर आई भक्ति के एक विराट आंदोलन के तहत आई, जिसका स्वरूप अखिल भारतीय है। दक्षिण के सबसे पुराने वैष्णव आलवार है, जिनकी संख्या 11 है। सवर्ण पिछड़ी जातियों शूद्रों से साथ इन आलवारों में अंदाल नामक एक स्त्री भी है। आलवार भक्तों को दक्षिण में ऋषियों के तुल्य माना गया है और उनकी रचनाएं जो दिव्य प्रबंधम शीर्षक ग्रंथ में संकलित है वेदों की तरह पूज्य है। इन आलवारों में शूद्रों तथा एक स्त्री की उपस्थिति आगे चलकर उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत नीची मानी जाने वाली जातियों से संतों की एक शानदार परंपरा का सामने आना भक्ति आंदोलन को मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना बनाता है। दक्षिण के रामानुज पहले वैष्णव आचार्य हैं, जिन्होंने ऊर्ध्वबाहु होकर घोषणा की थी कि भक्ति तथा उपासना के क्षेत्र में भगवान के दरबार में संवर्ण और संवर्ण स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, सबको ईश्वर की उपासना का बराबर का अधिकार है। रामानुज ने अपने शिष्य परंपरा में भी शूद्रों को स्वीकार किया और उनके एक गुरु भी शूद्र थे। पृष्ठ संख्या 269। चली आ रहे सामाजिक संरचना का उनकी वर्णवादी स्त्री पुरुष में भेद करने वाली मानसिकता का भक्ति के आंदोलन में इस तरह का लचीलापन भक्ति के आंदोलन को महत्वपूर्ण तो बनाता ही है, अपने ढंग से उसके क्रांतिकारी चरित्र का भी साक्ष्य देता है। इतिहासकारों, साहित्य तथा संस्कृत विदों ने उसे क्रांतिकारी महत्व की घटना कहा भी है।